ओम शांति। सभी आत्माभिमानी स्थिति में बैठ जाएंगे। कोई आवाज नहीं, मौन, एकांत, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि। बहुत बहुत समय पहले एक लकड़हारा किसी जंगल में रोज जाया करता था लकड़ी तोड़ने के लिए। सारे दिन भर लकड़ी तोड़ता, शाम को उस लकड़ी को बेचता और फिर घर वापस आता। कई दिनों तक उसका यह क्रम चालू था। उस जंगल के प्रवेश द्वार पर वो हमेशा देखता एक बूढ़ा सा फकीर किसी झाड़ के नीचे लेटा हुआ है, और जब भी वहां से गुजरता उस फकीर को दूर से ही प्रणाम करता। ऐसा कई दिनों तक चालू था। एक बार वो उस फकीर के समीप से गुजरता है, तब यकायक वो फकीर उससे कहता है, तुम अभी तक यहीं पर हो? इस जंगल से रोज लकड़ियां तोड़कर जाते हो। थोड़ा अगर तुम आगे चले गए होते तो वहां पर लोहे की खान है, तुम वो लोहा लो और फिर बेचो तो तुम्हें रोज रोज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते में एक बार भी आ गए तो आराम से तुम्हारा गुजारा होगा। पहले तो उस व्यक्ति को यकीन नहीं आता, फिर सोचता है जाने में क्या इतराज है, अगर नहीं भी निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो व्यक्ति एक दिन या दूसरे ही दिन थोड़ा सा जंगल के आगे जाता है तो देखता है वास्तव में वहां पर लोहे की खान है। इतना लोहा ले लेता है और बेचता है तो एक हफ्ते तक उसको आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा वो क्रम चालू होता है, हफ्ते में एक बार आना, लोहा लेना, बेचना और हफ्ते भर आराम करना। एक दिन फिर जब वो उस फकीर के पास से गुजरता है तो फकीर उसको कहता है, तुम अभी तक लोहे के ही खान में हो, उससे अगर तुम थोड़ा आगे गए होते तो वहां पर चांदी की खान है। तो उस व्यक्ति को लगता है ये व्यक्ति कह रहा है तो जरूर होगी। दूसरे दिन वो थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है वास्तव में चांदी की खान है। फिर तो क्या, वो चांदी लेता है, बेचता है, अब उसको दो तीन चार हफ्ते तक आना नहीं पड़ता। इस तरह वो महीने में एक बार आता है। फिर इस तरह जब क्रम चालू रहता है, कुछ दिनों के बाद मतलब कुछ महीनों के बाद वो फकीर के पास से फिर गुजरता है तो फकीर उससे फिर कहता है, तुम अभी तक चांदी की खान में ही फंसे हो, तुमको पता है आगे अगर तुम थोड़ा चले जाओ तो वहां पर सोने की खान है। तो वो व्यक्ति सोचता है, मुझे अभी तक इतना क्यों नहीं सूझा कि जितना आगे जाऊंगा उतना अच्छा है। तो वो सोने की खान में जाता है और वहां से ढेर सारा सोना लेता है और फिर तो 6 मास में एक बार आता है। और फिर उसके मन में आता है कि मैं सोने की खान में क्यों फंसू, अब बिना उस फकीर को पूछे हुआ वो और आगे जाता है तो देखता है वहां पर क्या है, हीरे की खान है। और फिर उस फकीर के पास से गुजरता है और फकीर को कहता है, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूं, कि आप अब मुझे बताओ कि आगे हीरो की खान है, मैं हीरो की खान तक भी जाके आया हूं, अब और भी कुछ है क्या? वो फकीर कहता है हां, हीरो की खान तक तो तुम चले गए, उसके भी आगे एक खान है। और वो उससे पूछता है, क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैंने तुमको ये सब बताया तो ये जितनी खाने हैं उन सब का ज्ञान तो मेरे पास फिर भी है, होने के बावजूद भी मैं यहां बैठा हूं, तो जरूर मेरे पास उस हीरे की खान से भी ज्यादा कुछ होगा। तो व्यक्ति घर चला जाता है, शाम के समय उसे नींद नहीं आती है, आखिर ऐसा हीरो से भी अधिक कौन सी खान है जो इस व्यक्ति के पास है। फिर से रात में उठ कर जाता है और उस व्यक्ति के चरणों में बैठता है और उसको कहता है, अब आप मुझे बताओ क्या हीरो से भी बड़ी कोई खान होती है और जो आपके पास है? तो फकीर कहता है हां, और वो खान है मैं खुद, और वो खान है ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश। ये कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है और वो फकीर कोई महात्मा बुद्ध का ही शिष्य होता है। दिखाया है ये गृहस्थी, वो लकड़हारा रात भर उसी के चरणों में बैठा रहता है, दृष्टि लेते रहता है, फिर कोई प्रश्न नहीं पूछता रात भर। सुबह सुबह वो फकीर अपने दूसरे शिष्यों से कहता है, ये लकड़हारा है ये अब मेरा उत्तराधिकारी होगा, और इतना कहकर शरीर छोड़ देता है। और ये जो गृहस्थी लकड़हारा होता है साधारण सा, एक महान रातों रात तपस्वी बन जाता है, गुरु के शरण में चला गया, बैठ गया, सारे अहंकार को बाजू रख दिया, और जो प्रकाश उस गुरु में था सारा सारा अपने अंदर रातों रात धारण कर लेता है और सुबह तक परम ज्ञान की उपलब्धि उसे हो जाती है। और तब उसे पता चलता है कि यह ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, इससे बड़ा और कोई खजाना नहीं है। और इस समय भगवान स्वयं आकर इस खजाने को क्या कर रहा है, लुटा रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भक्ति में नौ खजानों की चर्चा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, अष्ट सिद्धियों का गायन है, आठ सिद्धियां और नौ खजाने। इस समय वो आया है और खजानों को लुटा रहा है। भक्ति में गायन है, नाम की लूट है, उसके नाम में ही इतना बल दिखाया है। यहां जब भगवान स्वयं धरा पर आता है, केवल नाम की लूट नहीं, यहां खजानों की लूट है। परंतु हम कहीं उस लकड़हारे की तरह तो नहीं, थोड़ा सा मिल गया अब यह सोचना ही बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, ज्ञान में आ गए और बाबा से थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, थोड़े बहुत आंसू आ गए और अच्छा लगा और बाबा ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, अब सोचा बस यहीं तक है, हम बहुत आगे बढ़ गए। अरे आगे और भी बहुत है, ये केवल मील के पत्थर है। परमात्मा प्रेम में जो अनुभव होते हो, परमात्मा ज्ञान में जो अनुभव होते हैं, उसमें रुकना नहीं है, और आगे और आगे और आगे। पश्चिम जगत में यहूदी फकीर हेलिल, ज्यूइश मिस्टिक से किसी ने पूछा था व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है, उसने कहा था अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे, रुकना नहीं है। ज्ञान ले लिया, ज्ञान समझ लिया, सेवा कर ली, सेंटर्स खुल गए, खोल दिए, रिट्रीट सेंटर हो गया, मेगा प्रोग्राम कर लिए, बहुत कर लिया, मधुबन चले गए, बाबा से मिल लिए, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अशरीरीपन का अनुभव हुआ, साक्षात्कार, ये दिखा, इधर लाइट उधर लाइट, यहां लाइट वहां लाइट, और सोचा बहुत अच्छा हो गया, बहुत आगे बढ़ गए, ब्रह्मा बाबा दिख गए, यहां पर खड़े थे, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को स्वप्न में स्वर्ग दिखता है। एक बहन ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, कह रही थी कि सुबह 4 बजे का समय था, अमृत वेले उठने का समय, पर मुझे स्वप्न में स्वर्ग दिखाई देना दे रहा है, अब क्या करूं, उठूं कि नहीं उठूं? स्वर्ग में मैं घूम रही हूं स्वप्न में, तो उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, क्या उत्तर है? क्यों, वो स्वर्ग का स्वप्न चला जाएगा, ऐसे हमेशा थोड़ी आता है, कितना रेयर आता है, दुर्लभ। ये भी माया है, स्वप्न में बाबा के साथ हाथ पकड़कर चल रही है, इधर देखा थोड़ी सी आंख खोल के 4 बज रहे हैं, परंतु यहां बाबा का साथ ही है, अब उठना है कि नहीं उठना है? ये भी डिवाइन माया है, रुकना नहीं। थोड़ी सी प्रगति कर ली, थोड़े से ज्ञान बढ़ गया, थोड़ा सा योग बढ़ गया, चार्ट बढ़ गया, सेवाएं कर ली, धारणाएं बहुत होने लगी, पवित्रता पहले बार बार टूटती थी, अभी अखंड चल रही है, और वहीं रुक गए। रुकना नहीं है, एंड मोर और आगे एंड आगे, आगे 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 बढ़ते जाओ, सितारों से आगे जहां और भी है, रुकना नहीं है। 9 खजाने, कितने खजाने दिए हैं बाबा ने? अनगिनत वैसे तो, पर आज हम 9 खजाने की चर्चा करेंगे। इस खजानों में लोभ चाहिए, लोभ और शुद्ध लोभ, भरना है स्वयं को, आकंठ भरना है, इतना भर दो कि अपने आप वो निकल पड़े। बाबा हमेशा कहते दानी बनो, महादानी बनो, क्यों दान करना है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, आपका क्या उत्तर है? क्यों हमें देना है, हम दाता के बच्चे, इसलिए देना है, दान करना है, क्यों दान करना है? क्योंकि संसार वाले दुखी है, उनके पास कुछ नहीं है, हमें दान इसलिए करना है कि हम रहम दिल है, ये सारे कारण है, पर और एक कारण भी है। देना ही लेना है, दान दो तो और बढ़ेगा, स्पिरिचुअल स्टेटिस्टिक्स, स्पिरिचुअल फिनेंस, और दान करने से क्या होगी? नहीं, करना क्यों है वो प्रश्न है, करना क्यों है दान? वैराग बढ़ेगा, खुशी होगी, दुआएं मिलेगी, ज्ञान बहता हुआ पानी है, तो उसको रोकना नहीं है। हाँ, ग्रहण छूट जाएंगे, दे दान तो छूटे ग्रहण, ओके। और बाइबल में एक स्टोरी आती है, जीसस क्राइस्ट सुनाता है, वो कहता है कि एक धनपति है, एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में काम करने के लिए उसने सुबह सुबह कुछ मजदूरों को रखा, सुबह से आ गए मजदूर काम कर रहे हैं, दोपहर तक ऐसा लगा कि कुछ मजदूर और चाहिए, दोपहर तक लगा कि कुछ मजदूर और चाहिए, तो उसने कुछ नए मजदूर दोपहर में बुलाए, वो दोपहर से काम करने लगे, शाम तक उसको ऐसा लगा, वो जमींदार को, वो जो धनपति था, कि काम तो बहुत बाकी है, शाम को कुछ मजदूर और मंगाए, और रात को जब पैसे देने लगा तो सबको समान पैसे दे दिए, अब जो सुबह से आने वाले थे उनको थोड़ी गड़बड़ हो गई, बेचैनी हो गई। उन्होंने कहा हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं और ये लोग दोपहर से आए और ये रात में आए, सबको समान पैसे कैसे? हमने तो ज्यादा काम किया, ज्यादा मेहनत की। तो वो धनपति कहता है क्या तुमको जितने पैसे मिले उतने कम है तुम्हारी क्षम के अनुसार? वो कहते नहीं, हमको जो पैसे मिले वो तो बराबर मिले, पर ये जो दूसरे जो दोपहर में आए थे उनको भी उतने ही पैसे मिले, और जो रात में आए शाम को आए उनको भी उतने पैसे मिले। वो क्या है? वो उनको ऐसे नहीं मिलने चाहिए। तो वो धनपति कहता है मैं दे इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा है, इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं अमीर हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं रहम दिल हूं या तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। ही जीसस ने कहा आई कॉल हिम द मैन ऑफ चैरिटी हु गिव्स आउट ऑफ एबंडेंस। दे इसलिए रहे हैं कि इतना भर गया है, इतना भर गया है कि अपने आप दिया जा रहा है। अब इतनी विपुलता है अंदर, इतनी भरपूरता है अंदर, उस भरपूरता के वजह से स्वतः ही दिया जा रहा है। मैं चाहूं भी तो नहीं रोक सकता उसको। आई कॉल हिम द मैन ऑफ चैरिटी हु गिव्स आउट ऑफ एबंडेंस। खजानों को इतने भर दो, इतने भर दो, इतने भर दो, इतने भर दो कि अब तुम रोकना चाहो भी तो नहीं रोक सकते उसको, नहीं रोक सकते। वो बहेगा क्योंकि भर चुका है। अब तक नहीं बह रहा था क्योंकि भरा ही नहीं था, भरा नहीं था और आवाज ज्यादा था, अधगल गगरी छलकत जाए, वो स्थिति थी एम्प्टी वेसल में एक नॉइस वाली। परंतु अभी इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया है कि झलक रहा है, बह रहा है। फिर वो ये नहीं देख रहा है कि इसने सुबह से काम किया, कोई अभी आया, कोई शाम को आया, कोई योग्य है या नहीं है, बस निरंतर महादानी। नौ खजाने, सबसे पहला ज्ञान, पहले गिनाते हैं फिर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला खजाना ज्ञान का, दूसरा खजाना गुणों का, तीसरा शक्तियों का, ये तीन। चौथा संकल्प, पांचवा समय या श्वास, एक ही। ज्ञान, गुण, शक्तियां, संकल्प, समय या फिर श्वास, खुशी, छठवा। सातवां पवित्रता, आठवां दुआएं और नौवां संतुष्टता। खजाने बहुत सारे हैं, मुख्य खजाने ये है। फर्स्ट स्टेप है इन खजानों से स्वयं को भरना। पहला ज्ञान, ज्ञान से भरना है। ज्ञान जो कंठ कर लेते हैं उन्हें ज्ञान गंगा कहा जाता है। आज सुबह की साकार मुरली, जो आदि मध्य अंत को जानते हैं उन्हें मास्टर जानी जाननहार कहा जाता है। इस ज्ञान की, इसके पहले भी बताया था, रोज चर्चा करना, मनन करना, अध्ययन करना, इसके ऊपर सोचना, ये क्यों कहा बाबा ने। और दो तीन बातें यहां पर है जो हमेशा हम अपने क्लासेस में बताते हैं कि अध्ययन क्यों करना है, मनन क्यों करना है। जब हम मनन करते हैं तो ज्ञान स्पष्ट होता है। जैसे कोई मुरली का एक वाक्य है, कुछ भी हमने पढ़ लिया, वो उतना पढ़ना काफी नहीं है। एक वाक्य पढ़ लिया छोटा सा, परमात्मा एक है, जैसे कल की साकार मुरली का एक वाक्य, छोटा सा वाक्य है, इतना पढ़कर उसको छोड़ नहीं दो। संसार में क्या क्या मान्यता है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड इन वर्ल्ड, संसार भगवान को किस किस रूपों से, नामों से जानता है, जपता है, पूछता है। एक वाक्य आया छोटा सा, उसको वहां से उठाओ, उसको अलग करो और फिर उसके बारे में सोचो, मनन करो, डिस्कस करो, अपना एक ग्रुप बनाओ, जो रोज रात में, यदि युगल है और दोनों ज्ञान में चलते हैं, तो रात में दोनों ही बैठकर ज्ञान की चर्चा करें। यदि घर परिवार में दो लोग भी ज्ञान में हैं तो दो लोग मिलके बैठे, अगर कोई भी नहीं है तो बाहर कहीं किसी के कोई कुमारों का ग्रुप अपना एक बने कि जो बैठकर रोज ज्ञान की चर्चा करे। बहुत 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 जरूरी है। मुरलियां बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत लिख ली, अब चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो उसका, स्टडी। जैसे कोई पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स कैसे बैठते हैं एक कमरे में, दिन रात पढ़ते रहते हैं, सब छोड़ देते हैं, कोई लेना देना नहीं कौन सी क्रिकेट मैच है, क्या हो रहा है, सारा सोशल मीडिया बंद और पूरा फोकस पढ़ाई पर। तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, तुम्हें धुन लग जानी चाहिए, बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई की। आज ही है या कल था, जो ज्ञानी तू आत्मा है वो बाप को प्रिय है। पहला खजाना ज्ञान, कहां कब करना, ये उसमें भी एक प्रश्न पूछा क्यों करना है, बहुत सारे कारण है उस ज्ञान को अपना बनाने के लिए। वो पॉइंट मुरली की पॉइंट है, वहां से हमने उसको उठाया, अब वो मेरी तब तक नहीं बनेगी जब तक मैं चिंतन नहीं करूंगा। क्यों करना है, फिर है कब करना है। सबसे बेस्ट टाइम जो है मुरली चिंतन का वो है अमृत वेले के बाद का समय, 4:45 से लेके तो 7 बजे तक। अमृत वेले के बाद कौन कौन सोता है पहले हाथ खड़ा करो। अमृत वेला हुआ और उसके तुरंत बाद त्यज अगर मगर आ जाओ इधर राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो, बिस्तर पुकारता है। बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूं। ऐसा बिस्तर से आवाज किसको किसको आती है, छोड़ते बस अभी अमृत वेला होगा और भागो अब और सो जाओ। और कई लोग कहते हैं वो समय स्वप्न भी बड़े अच्छे आते हैं और रिफ्रेश लगता है। अमृत वेला सोना अर्थात की कमाई चट करना। अमृत वेले के बाद का समय चिंतन का समय है, मनन का समय, अध्ययन का समय है, स्वयं को ज्ञान से भरने का समय है, दिन भर की प्लानिंग करने का समय है, एकांत का समय है, मौन का समय है, प्रकृति के सानिध्य का समय है। यह सब न करते हुए सो जाना, ये श्रीमत नहीं। हाँ फिर कहते हमको दिन में सोने का टाइम नहीं, हमको याऊं, हमको त्याऊं, हमको ऐसा, हमको वैसा, हजार कारण है, पर यह समय फिर नहीं आएगा। भरना है उस समय, एक तो वो समय है और दूसरा रात को सोने से पहले का समय चिंतन का समय है, मनन का समय है। टीवी देखते देखते कौन सोता है एक भाई था, वो कहता था हम लोग भोजन करते करते बाबा को भी याद करते, ऊपर देख के बाबा को याद करते, नीचे देखते भोजन करते हुए बाबा को याद करते, फिर टीवी भी देखते, फिर बाबा को याद करते, फिर टीवी भी देखते दोनों काम साथ साथ करते। समय अमृत वेले के बाद का, उसमें सोना नहीं है। हाँ अगर रेस्ट करना है खाली लेट जाओ 10 मिनट के लिए, शवासन करते हैं ना लोग, वैसा लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, क्लास सुनो, वॉकिंग को जाओ, लॉन्ग वॉक, पर सोना नहीं। तीसरा, कहां करना है चिंतन। बाबा का कमरा बहुत सारी जगह है, पर सबसे बेस्ट है नेचर, प्रकृति, खुला मैदान, आकाश, छत, झरने, झील, समंदर, पर्वत। आप कहेंगे ये सब कुछ भी नहीं है हमारे पास हम कहां से लाए सड़क तो है सड़क तो है कि नहीं है, सड़क तो है, छत तो है, गार्डन ढूंढो, जिन खोजा तिन पाइया, आस्क एंड ई शैल रिसीव, सर्च एंड ई शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन। खटखटाओ तो खुलेगा, ढूंढना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। जिसको लगन है वो ढूंढेगा, कौन सी ऐसी जगह जाए जहां पर मौन हो, निस्तब्धता हो, शांति हो, मनुष्यों का पदचाप की भी आवाज ना हो, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे स्थान पर चले जाओ और वहां पर ज्ञान का चिंतन करो। क्यों करे, कब करे, कहां करे। पहला खजाना ज्ञान, दूसरा खजाना गुण। गुण कहां से सीखेंगे? गुण सीखो दूसरों के जीवन से। गुण कहां से सीखेंगे? दूसरों के जीवन से। विशेषता दो, विशेषता लो। गुण दो, गुण लो, कल का वरदान था। जिसके जीवन में कुछ भी ऊंची धारणाएं दिखाई दे रही है, तुरंत खोज करो कैसे आई ये धारणा, क्या अंदर से कुछ तो सूक्ष्म अंदर ही अंदर ये व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो होगा, और उसको धारण करो। गुणों गुण चोर भव, क्या करना है? गुणों की चोरी करनी है। किसी में कोई गुण दिखा, तुरंत उसको छीन लो, चुरा लो, उसका कम नहीं होगा, उसका भी बढ़ जाएगा। गुणों को बढ़ाना है, स्टडी करो मेरे अंदर कौन सा गुण बाकी है। पंक्चुअलिटी, क्लास में हम टाइम पर आते हैं या हमेशा ही लेट आते हैं। डिसिप्लिन है या नहीं है, या अस्त व्यस्त पड़ा है जीवन, कभी जो मर्जी है तब कर रहे, कभी आज कर रहे कभी नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं है जीवन में, ऐसे ही बिखरा पड़ा है जीवन। जब हम में ही नहीं है, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम में ही प्रेम नहीं है, हम ही एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। जैसे एक मम्मी घर आती है, देखती है उसका छोटा बच्चा और छोटी बच्ची झगड़ रहे, वो कहता है ऐसे झगड़ा नहीं करते, वो कहता है नहीं हम तो मम्मी डैडी का खेल खेल रहे थे। झगड़ नहीं रहे, जैसे आप लोग खेलते हो ना वैसे हम भी खेल रहे हैं। दूसरों को हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक वो गुण हम में नहीं, और अगर कहे भी तो उनमें धारणा होगी उतनी ही जितनी वो हम में है। सुबह 8 बजे उठकर 9 बजे अमृत वेले पर कोई क्लास करा सकता है बिना अमृत वेला किए? सब लोग कहेंगे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हॉल से बाहर और खलास, दूसरों में धारणा उतनी ही होगी जितनी कराने वाले में है। किसी को कितना भी ठोक ठोक के हम कहे ये करो वो करो वो करो, वो करेगा उतना ही जितना हमने किया होगा। शब्दों में प्रभाव तभी आएगा, धारणा में होगी तो वाणी शक्तिशाली तब होगी जब स्वयं धारणा मूर्त है आत्मा। प्रभाव तब आएगा जब स्वयं ब्रह्मचर्य का तेज अंदर है। शक्ति तब आएगी जब प्यूरिटी की पावर अंदर बह रही है, अखंड पवित्रता। तब तक नहीं आएगी। हां, भाषण कोई दे सकता है, स्पीकर कोई बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर की संसार में ढेर पड़े हैं, परंतु धारणा कोई और शक्ति है। ज्ञान, गुण, तीसरा शक्ति। अभी अभी अव्यक्त वाणी चली थी अव्यक्त बाप दादा की, शांतिवन। माया को तुम चाय पानी पिलाते हो, बाबा ने कहा था बाप से शक्तियां लो और माया को दूर से ही भगा दो। स्वयं की आत्मा को शक्ति से भरना है। आत्मा शक्तिशाली तब होती है जब शरीर से डिटैच होती है। ये भूत प्रेत इतने शक्तिशाली क्यों है? शरीर से अलग है। शरीर से जैसे ही हम डिटैच होंगे, ऊपर से पावर भरनी चालू हो जाती है। जितना शरीर में आबद्ध है पावर कम। शरीर में होते हुए भी अशरीरीपन का अनुभव, अर्थात शक्ति, शक्ति भरनी है योग से, सुबह शाम बीच बीच में अशरीरीपन से अलग करके स्वयं को। ज्ञान, गुण, शक्ति। चौथा संकल्प। संकल्पों के प्रयोग करने से संकल्प शक्ति बढ़ेगी। कैसे करेंगे संकल्पों के प्रयोग? रात में सोते समय संकल्प करो कि सुबह सुबह हम इतने बजे ही उठेंगे, शक्तिशाली संकल्प उठेंगे ही। हम अभी यहां से जा रहे हैं, ट्रेन छूटने ही वाली है, हम संकल्प करेंगे जब मैं ट्रेन में पैर रखूंगा उसके बाद ही ट्रेन चालू होगी। ये योग के प्रयोग नहीं है, संकल्प के प्रयोग है। और ये गुप्त ही रखना, नहीं तो फिर 10 लोगों को सुनाते फिरेंगे, देखा हमने संकल्प किया था ट्रेन जब मैं बैठूंगा तब तभी ट्रेन चालू हुई, पावर कम हो जाएगी। अध्यात्म के जो अनुभव है उन्हें गुप्त रखे जाए, नहीं तो कम होते जाता है और अहंकार भी आ सकता है। देखा तुमने किया तो तुम्हारा नहीं हुआ ना, तुम्हारे संकल्प ही कमजोर है, मैंने किया तो मेरा हुआ, अहंकार आ सकता है। संकल्पों के प्रयोग। एक भगत था, रोज सुबह 4 बजे उठता था, भगवान की पूजा करता था। एक दिन आंख ही नहीं खुली, सीधा 5 बजे आंख खुली और फिर रोते रहा सारे दिन भर, भगवान से झगड़ता कि आपने मुझे उठाया नहीं, मैं रोज आपकी भक्ति करता हूं 4 बजे। दूसरे दिन 4 बजे एक आवाज आई, उठो, तो उसकी आंख खुली, उसको लगा देखा आज भगवान ने उठाया। तो उसने पूछा कौन है, उसने कहा मैं माया हूं। तो वो व्यक्ति पूछता है तुमने मुझे कैसे उठाया, वो कहता है कल मैंने तुमको सुला दिया था, तुमने भगवान से इतनी प्रार्थना की, अगर उसने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली तो मेरा क्या होगा, इसके लिए मैं खुद ही आ गई तुमको उठाने के लिए। ऐसी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ये सारी बातें, दृढ़ संकल्प। एक चीज सोच ली, महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, भीष्म प्रतिज्ञा, याद है ना, भीष्म कैसी प्रतिज्ञा की थी, कितने भीष्म के जीवन में चीजें हुई, प्रसंग आए, अंबा अंबालिका अंबिका, वो बहुत सारी चीजें हुई, पर तोड़ी क्या प्रतिज्ञा, बिल्कुल नहीं तोड़ी। संकल्प की शक्ति है ये, एक संकल्प ले लिया अब कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं उसको, इतना पक्का। तीसरा, चौथा, पांचवा, समय। समय की चर्चा हम हो सके तो शाम में एक क्लास है उसमें करेंगे, थोड़ी हमने कर ली है, परंतु इसमें है समय की शक्ति, अर्थात टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यदि मुझे कोई पूछता है कि आप क्या पुरुषार्थ करते हो, व्यक्तिगत रूप से हम हमेशा एक ही कहते हैं, हम अपना टाइम कहीं पर भी वेस्ट नहीं जाने देते। कोई आकर बहुत बार हमसे पूछते हैं आप चिंतन कब करते हो, हम उनसे कहते हैं क्योंकि ओपीडी में इतना बिजी रहता है और 24 आवर्स इमरजेंसीज, एक पेशेंट जाने के बाद दूसरा पेशेंट आने के बीच का जो समय होता है हमको लगता है वो भी वेस्ट ना जाए, उसमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान का अभ्यास या योग का प्रयोग किया जाए। समय वेस्ट नहीं करना है। बैठ गए किसी के साथ और घंटों बातें चल रही है मौसम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली है, बस बातें ही बातें चालू है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसने क्या किया। बाइबल में उदाहरण है, 3 दिन के बाद ईसा मसीह फिर वापस आते हैं सूली पर लटकाने के बाद, उनका एक शिष्य पीटर उनसे कहता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, ईसा मसीह कहते हां, फिर से पूछता है क्या तुम्हारा मुझसे प्रेम है, वो कहते हां, फिर से वही पूछता है क्या तुम्हारा मुझसे प्रेम है, हां। सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा दुखी हो जाता है, सॉरी ये प्रश्न जीजस उससे पूछता है और वो तीनों बार हां कहता है, परंतु उसको लगता है कि 3 बार मुझसे क्यों पूछ रहा है, पर वो एक प्रश्न वहां पर पूछता है, ये जो पीछे से आ रहा है व्यक्ति जॉन जो दूसरा शिष्य है, क्या तुम्हारा भी इससे प्रेम है, तो जीसस क्राइस्ट उससे कहते हैं व्हाट इज दैट टू यू, मेरा उससे कितना प्यार है तुमको क्या लेना देना है, तुम अपना काम से काम रखो, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं ना, बस अब अपने यहां तक ठीक है, मैं उससे कितना प्रेम करता हूं, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या लेना देना, किस सेंटर में क्या हो रहा है, मधुबन में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, इतना व्यर्थ जिसकी बुद्धि में भरा है वहां ज्ञान का चिंतन कहां से होगा। बाबा कहते हैं इसमें ज्यादा समझदार नहीं बनो, कम समझदार भव। कोई समझते हैं ना हम ज्यादा समझदार हैं, हमको सब पता है कहां कहां क्या क्या चल रहा है, ज्यादा होशियार, ये ऐसा करते वो वैसा करते हैं। ज्ञान गुण शक्तियां संकल्प समय, छठवां खजाना है खुशी, कितना हम खुश रहते हैं। जीवन बाबा को दे दिया और उसके बाद में दुखी, ऐसों की भी कमी नहीं है। क्यों दुख है वो उनको भी नहीं पता, पर दुख है, हिसाब किताब है क्या है पता नहीं, परंतु दुखी है अंदर से। बाबा अव्यक्त वाणियों में माताओं से कहते हैं, माताओं तुमको दुखों की आवाज नहीं सुनाई देती है भक्तों की। माताएं कहती है पहले बाबा आपको हमारी दुखों की आवाज नहीं सुनाई देती है क्या, पहले आप हमारी दुख की आवाज सुनो फिर हम भक्तों की आवाज सुनेंगे। वो सीन देखा है ना आपने, दुर्गा माता शेर पर सवार अष्टभुजाधारी जा रही है आगे आगे, पीछे भगत है मां मां, और माता दुर्गा मां बाबा बाबा कहते हुए आगे भाग रही है। सारे भगत दुर्गा माता के पीछे है और दुर्गा मां बाबा मेरी मदद करो, मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, मैं असंतुष्ट हूं, ये घर वाले सहयोग नहीं देते, पति की बुद्धि का ताला खोलो, इसका ताला खोलो, बेटा ज्ञान में नहीं चलता, वो दुखी है, ये दुखी है। और पीछे से भगत, हे जगत जननी मां मदद करो रहम करो। वो कहती है बाद में तुम्हें, और पहले मैं ही दुखी हूं। अच्छा सीन है ये एनिमेशन। तो ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प खुशी, खुशी को गवाना नहीं है। यदि दुखी है तो दुखी क्यों है, दुखस्य कौन कारणम, क्या कारण है दुख का, खोज करो रिसर्च करो क्यों मैं दुखी हूं। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, क्या है दुख का कारण, कहीं मोह तो नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संसार की सभी का सभी व्याधियों का मूल मोह को बताया है। कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसको पकड़ के रखा है और वही दुखी दे रहा है, दुखी कर रहा है, पर छोड़ना भी नहीं चाहते, दुख सबसे ज्यादा उसी से है पर उसको ही पकड़े हुए है। जैसे घोड़ा होता है, कांटे है झाड़ को, पत्ते खा रहा है, इधर कांटे चुभ रहे हैं, खून बहता है, फिर पत्ते खाना छोड़ता नहीं है। जैसे वो कुत्ता होता है, हड्डी पकड़ लेता है और चबाता है हड्डी को, खून बह रहा है हड्डी के वजह से, हड्डी में कुछ नहीं है और वही खून उसके मुंह में जा रहा है, उसको लगता है ये हड्डी से खून आ रहा है और टेस्ट उसको अच्छी लग रही है। ऐसी स्थिति मनुष्य की भी है, उस व्यक्ति में कुछ भी नहीं है, वस्तु में कुछ भी नहीं है। अगला दुआएं, दुआएं खजाना है। जानकी दादी कहती है मुझे दुआएं चला रही है, इतनी दुआएं अपने अंदर भर लो, हरेक की सेवा कर कर, हर एक से दुआएं निकले, हर एक से वो दुआएं चलाएगी, दुआएं मदद करेगी संकट के समय में। मनोरिंद्रा दादी के पास कोई बहन आती थी कभी और कहती थी दादी मुझे उदास लग रहा है, दादी कहती थी जाओ 7 डेज का कोर्स कराओ, अपने आप उदासी खत्म हो जाएगी, सेवा करो अपने आप उदासी चली जाएगी, दुआएं भी मिलेगी। उदास लग रहा है सिखाना चालू करो दूसरों को, अपने आप उदासी दुख सब खत्म होगा और दुआएं जमा होगी, दुआएं। अगले उसका अगला खजाना पवित्रता, पवित्रता शायद हमने पहले नहीं बताया, पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है पवित्रता, पवित्रता ही श्वास है, पवित्रता ही आधारशिला है, पवित्रता ही श्वास धड़कन सब कुछ है। ब्रह्मा बाबा के पास कितने लोग गए बाहर के, उन्होंने कहा कि आपकी संस्थाओं में जो इतना विरोध हो रहा है, ये पवित्रता ब्रह्मचर्य को थोड़ा हटा दो तो कितनी भीड़ लग जाएगी यहां पर, काली ये ब्रह्मचर्य को थोड़ा कम कर दो। उस सिंध में जहां पर सारे लोग विकारी थे, वो सारे पति, वहां पर ब्रह्मचर्य की स्थापना की भगवान ने आकर। लोगों ने क्या कहा, इस ब्रह्मचर्य को हटा दो, बाकी सब पूरी संस्था में हम सब 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 आ जाएंगे। बाबा ने क्या कहा था, भेड़ बकरियां नहीं चाहिए मुझे, शेर और शेरनियां चाहिए जो दहाड़ लगाए, और पवित्रता ही दहाड़ है, इससे बड़ा संसार में कोई बल नहीं है। सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की सीमा रेखा ब्रह्मचर्य है, पवित्रता है, उधर है इधर नहीं है, यही अंतर है बस। तो इस बल को अपने अंदर जमा कर रहा है। वो कौन से स्टिमुलस ट्रिगर्स है जिसके वजह से पवित्रता खंडित हो रही है, क्या वीडियो है, किताब है, क्लिप है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, क्या है, पिक्चर, पोस्टर, क्या है, मैसेज है, व्यक्ति है, वस्तु है, कपड़े है, क्या है, क्यों है यह दैहिक आकर्षण? जरूर कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। क्या है, सोशल मीडिया है, एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। स्टॉप ऑल द सेंशुअल स्टिमुलस, जितने भी स्टिमुलाए हैं, फिलिप्स ट्रिगर्स, सबको बंद करो, अपने आप पवित्रता आ जाएगी। वो देखना बंद कर दो, वो सुनना बंद कर दो, डिसेबल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, डिजिटल डिटॉक्स। लास्ट खजाना संतुष्टता। लास्ट संडे मुरली चली थी संतुष्टता पर। तो ऐसे ये 9 खजाने हैं जो हमको अपने अंदर धारण करने हैं। ठीक है, अभी अगला सेशन शाम को होगा 3:30 बजे। ओम शांति।